एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के सोच की गहराइयों में उतरेंगे जिनका नाम शायद मतलब उतना आम न हो, पर जिनके विचारों की गूंज आप कह सकती हैं पश्चिमी और पूर्वी सोच, धर्म, यहाँ तक कि हमारी आज की चेतना की समझ पर भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं प्लॉटिनस की।
जी हाँ, प्लॉटिनस, उन्हें नव प्लेटोवाद यानी न्यो प्लेटोनिज्म का संस्थापक माना जाता है। और वो सिर्फ प्लेटो के विचारों को दोहराने वाले नहीं थे, उन्होंने वास्तविकता, आत्मा और उस परम स्रोत जिसे वो एक कहते थे द वन, उसके बारे में कुछ बहुत गहरा सोचा।
हाँ, और कहते हैं कि उनके विचारों ने सदियों तक दार्शनिकों और जो रहस्यवादी थे उनको राह दिखाई।
बिल्कुल, और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, जैसा आपने कहा, उनका दर्शन एक तरह की रूहानी यात्रा थी, एक जीने का तरीका। तर्क, नैतिकता और वो गहरा आध्यात्मिक अनुभव, इन सब का एक अनूठा संगम था।
तो चलिए आज प्लॉटिनस के इसी अनोखे संसार की पड़ताल करते हैं, उनके जीवन, उनका समय और वो विचार जिन्होंने इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ी, उनको समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, तो शुरुआत करते हैं उनके दौर से। प्लॉटिनस जी रहे थे 3री सदी ईस्वी में। अब ये जो समय था रोमन साम्राज्य के लिए बड़ी उथल पुथल का दौर था।
अच्छा
जी, इतिहासकार इसे 3री सदी का संकट या क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी कहते हैं। मतलब राजनीतिक अस्थिरता, लगातार लड़ाइयां, आर्थिक मुश्किलें, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनिश्चितता थी।
तो ऐसे माहौल में अक्सर लोग बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अंदर की शांति या किसी गहरे सत्य की तलाश में लगते हैं, है ना? शायद ऐसा ही कुछ हो रहा होगा।
आपने बिल्कुल सही नब्स पकड़ी, उस दौर में ठीक यही हो रहा था। आप देखिए, रहस्य पंथ थे, मिस्ट्री कॉल्ट्स, ज्ञानवाद यानी ग्नोस्टिसिज्म और ईसाई धर्म जैसी नई धाराएं उभर रही थीं। ये सब लोगों को एक तरह से व्यक्तिगत मोक्ष और आध्यात्मिक सुकून का रास्ता दिखा रही थीं।
और जो पहले से मौजूद दर्शन थे जैसे स्टोइकवाद वगैरह,
हाँ, स्टोइकवाद, एप्यूग्यूरिज्म, वो भी मन की शांति जिसे वो अटराक्सिया कहते थे उसी पर जोर दे रहे थे।
तो प्लॉटिनस इसी माहौल में आते हैं और प्लेटो के दर्शन को एक नए अंदाज में, एक आध्यात्मिक रंग देकर सामने लाते हैं।
बिल्कुल, उन्होंने प्लेटोवाद को सिर्फ एक अकादमिक चीज नहीं माना, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता दिखाया। प्लेटो के विचार तो केंद्र में थे ही, पर उन्होंने अरस्तु और स्टोइक दर्शन के भी जो जरूरी तत्व थे उन्हें बड़ी खूबी से अपने सिस्टम में मिला लिया।
ये जानना दिलचस्प होगा कि वो इस सोच तक पहुंचे कैसे, मतलब उनके अपने जीवन की कहानी क्या थी और हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है, स्रोत क्या है।
देखिए, प्लॉटिनस के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें मिलती है उनके सबसे करीबी और प्रतिभाशाली शिष्य पोर्फिरी से। पोर्फिरी ने उनकी जीवनी लिखी थी। प्लॉटिनस का जन्म रोमन मिस्र के लाइकोपोलिस शहर में हुआ था, करीब 204 या 205 ईस्वी में।
मिस्र में? पर वो तो यूनानी दार्शनिक माने जाते हैं ना?
हाँ, जन्म मिस्र में हुआ जो उस वक्त रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, पर वो सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह यूनानी थे, हेलेनिस्टिक। उनकी सोच, उनकी भाषा सब यूनानी थी।
और दर्शन की तरफ उनका झुकाव कैसे हुआ? कोई खास मोड़?
पोर्फिरी बताते हैं कि करीब 27 साल की उम्र तक प्लॉटिनस को जैसे अपनी राह नहीं मिली थी। फिर उन्होंने दर्शन पढ़ना शुरू किया, अलेक्जेंड्रिया गए जो उस जमाने में ज्ञान का बड़ा केंद्र था। वहां कई शिक्षकों से मिले पर कहीं बात बनी नहीं, उन्हें तसल्ली नहीं मिली।
फिर
दार्शनिक थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। प्लॉटिनस उनके पास गए, उनका लेक्चर सुना और सुनते ही अपने दोस्त से कहा, यही वो आदमी था जिसकी मुझे तलाश थी।
अरे वाह, मतलब गुरु मिल गया आखिरकार।
जी हाँ, और फिर वो अगले 11 साल तक अमोनियस के छात्र बने रहे। इसके बाद उनके मन में एक और इच्छा जागी, पूरब का ज्ञान जानने की, खासकर फारसी और भारतीय दर्शन।
पूरब का ज्ञान, ये दिलचस्प है।
हाँ, और इसी चक्कर में वो 243 ईस्वी में सम्राट गॉडियन त्रिपीय के फारस अभियान के साथ हो लिए। सोचा कि शायद वहां कुछ सीखने को मिलेगा,
लेकिन वो अभियान तो वो तो असफल रहा था ना?
हाँ, बुरी तरह नाकाम रहा। सम्राट गॉडियन मार दिए गए, सेना में भगदड़ मच गई। प्लॉटिनस भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकले और अंत में करीब 40 साल की उम्र में वो रोम पहुंचे।
रोम, और यही से उनके जीवन का सबसे अहम दौर शुरू हुआ।
बिल्कुल, रोम में उन्होंने अपना स्कूल खोला, पढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते उनकी ख्याति फैल गई। उनके छात्रों में बड़े बड़े लोग थे, सेनेटर, डॉक्टर और जाहिर है पोर्फिरी जैसे विद्वान।
उनका रहन सहन कैसा था?
वो बहुत ही तपस्वी की तरह रहते थे, सादा जीवन, लेकिन समाज से कटे हुए नहीं थे। उन्हें सम्राट गैलिनस और उसकी पत्नी सलोनिना का संरक्षण भी मिला हुआ था।
अच्छा।
हाँ, और उन्होंने सम्राट को कैंपानिया में दार्शनिकों के लिए एक आदर्श शहर प्लेटोनोपोलिस बसाने के लिए राजी करने की कोशिश भी की थी, प्लेटो के रिपब्लिक जैसा कुछ। खैर, वो योजना कामयाब नहीं हो पाई।
उन्होंने लिखना कब शुरू किया, मतलब उनके विचार हम तक कैसे पहुंचे?
ये भी एक दिलचस्प बात है। प्लोटिनस ने सालों तक कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ पढ़ाया, चर्चा की। वो मानते थे कि असली ज्ञान संवाद से आता है, लिखने से नहीं।
तो फिर
बाद में उनके शिष्यों, खासकर पोरफ्री ने बहुत जोर दिया, तब जाकर उन्होंने अपने विचारों को निबंधों यानी ट्रीटीजेस की शक्ल में लिखना शुरू किया। उनकी मृत्यु हुई 270 ईस्वी में। उसके बाद पोरफ्री ने उनके सारे यानी 54 निबंधों को इकट्ठा किया, उन्हें संपादित किया,
और इसी संग्रह को हाँ दी एनियड्स, दी एनियड्स के नाम से जानते हैं, है ना?
बिल्कुल सही। एनियड्स का मतलब है नौ का समूह, क्योंकि पोरफ्री ने उन 54 निबंधों को नौ नौ के 6 हिस्सों में बांट दिया था। ये प्लोटिनस का एकमात्र काम है और उनके पूरे दर्शन का निचोड़ इसी में है।
इसकी शैली, इसकी भाषा कैसी है? क्या ये आम दर्शन की किताबों की तरह है, मतलब तर्क और विश्लेषण?
नहीं, ये कोई सिस्टमैटिक टेक्स्ट बुक जैसी नहीं है। ये अलग अलग विषयों पर जैसे नैतिकता, ब्रह्मांड, आत्मा, बुद्धि, सौंदर्य और सबसे बढ़कर वो परम सिद्धांत जिसे वो एक कहते हैं, उन पर गहरे चिंतन का संग्रह है। भाषा अक्सर बहुत गहरी, गूढ़, कहीं कहीं तो काव्यात्मक सी लगती है।
जैसे किसी ध्यान के अनुभव को बयान कर रहे हो।
हाँ बिल्कुल, जैसे किसी गहरे ध्यान या समाधि के अनुभव को शब्दों में ढालने की कोशिश हो। और यहीं पर प्लेटिनस का सबसे बड़ा और अनोखा योगदान सामने आता है, वास्तविकता की त्रिस्तरीय संरचना का सिद्धांत। इसे तीन मूल तत्व, थ्री हाइपोस्टेज कहा जाता है।
तीन मूल तत्व, ये उनके दर्शन की रीढ़ की हड्डी जैसे लगते हैं, ये क्या है विस्तार से बताइए।
बिल्कुल, यहीं प्लेटिनस की मौलिकता सबसे ज्यादा दिखती है। देखिए, उनके सामने एक बड़ी दार्शनिक चुनौती थी। प्लेटो ने एक सिद्ध, ना बदलने वाला रूपों फॉर्म्स का जगत बताया था और एक हमारी ये अपूर्ण बदलती हुई भौतिक दुनिया। सवाल था, इन दोनों में रिश्ता क्या है?
हाँ, ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है।
प्लेटिनस का जवाब था, एक श्रेणीबद्ध वास्तविकता का मॉडल, एक हायरार्की जो एक परम स्रोत से निकलती है। सबसे ऊपर, सबसे परम है एक, द वन। इसे वो शुभ, द गुड भी कहते हैं।
एक तो क्या ये ईश्वर है, मतलब जैसे हम आम तौर पर समझते हैं?
हाँ और नहीं, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक हर चीज का परम स्रोत है, बिल्कुल, लेकिन ये कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं है जो सोचता है या योजना बनाता है या दुनिया बनाता है। ये उससे भी परे है।
परे मतलब?
मतलब ये अनंत है, असीम है, पूरी तरह सरल है। इसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। ये अस्तित्व और विचार से भी पहले हैं, उनसे भी परे। प्लोटिनस एक उपमा देते हैं, जैसे सूरज से रोशनी अपने आप निकलती है, बिना सूरज के चाहे या सोचे।
अच्छा,
वैसे ही एक से बाकी सब कुछ बहता है, एमनेट्स होता है। ये शुद्ध एब्सोल्यूट एकता है जिससे सब कुछ निकलता है, पर वो खुद इन सब से अछूता रहता है।
तो एक से चीजें बहती हैं यानी एमिनेशन,
उत्सर्जन।
हाँ,
उत्सर्जन। और ये उनके दर्शन का दूसरा अहम सिद्धांत है, उत्सर्जन, एमिनेशन और वापसी, रिटर्न। ये दोनों प्रक्रियाएं उन तीन मूल तत्वों के साथ जुड़ी हुई हैं। एक से जो पहला बहाव या उत्सर्जन होता है वो है बुद्धि, नूस। ये दूसरा मूल तत्व है।
बुद्धि, नूस, ये क्या है?
बुद्धि वो क्षेत्र है जहां शुद्ध विचार और शुद्ध अस्तित्व एक हैं। प्लेटो के जो सारे रूप या फॉर्म्स थे वो सब यहां एक पूर्ण एकता में मौजूद हैं। ये वो पहली चीज है जो एक से निकलती है और ये लगातार एक का ही चिंतन करती रहती है। आप इसे एक तरह का दिव्य मन समझ सकते हैं,
जहां सारे विचार एक साथ हैं बिना किसी क्रम या दूरी के।
बिल्कुल, शुद्ध सहज चेतना। और फिर बुद्धि से अगला उत्सर्जन होता है आत्मा, सोल, साइकी। ये तीसरा मूल तत्व है।
आत्मा, तो ये हमारी आत्मा है?
आत्मा के दो स्तर हैं। एक है विश्व आत्मा, वर्ल्ड सोल, जो पूरे ब्रह्मांड को रचती है, उसे चलाती है, उसमें व्यवस्था बनाए रखती है। और फिर है हम जैसी व्यक्तिगत आत्माएं जो अलग अलग शरीरों में वास करती हैं। आत्मा एक तरह से बुद्धि की दुनिया और हमारी इस भौतिक इंद्रियों वाली दुनिया के बीच पुल का काम करती है।
तो ये तीन स्तर हो गए, सबसे ऊपर एक, फिर उससे निकली बुद्धि, और फिर बुद्धि से निकली आत्मा, और ये सब उत्सर्जन के जरिए, मतलब एक बहाव के जरिए निकले हैं।
बिल्कुल। और ये उत्सर्जन, जैसा मैंने कहा, कोई सचेत क्रिया नहीं है। ये एक की अनंत परिपूर्णता का एक जरूरी अनैच्छिक अति प्रवाह, ओवरफ्लो है, जैसे झरने से पानी का बहना। और एक और बात, जैसे जैसे आप स्रोत यानी एक से दूर होते जाते हैं, चीजें ज्यादा जटिल, कम एकीकृत और कम पूर्ण होती जाती हैं।
इसीलिए भौतिक दुनिया सबसे नीचे है और सबसे ज्यादा बिखरी भी लगती है।
एग्जैक्टली। भौतिक दुनिया उत्सर्जन के इस क्रम में सबसे नीचे है, एक से सबसे दूर, इसीलिए वो सबसे ज्यादा खंडित और अपूर्ण लगती है।
और आपने वापसी, रिटर्न का भी जिक्र किया था, इसका क्या मतलब है?
यही मानव जीवन का असली मकसद है। प्लॉटनेस के अनुसार उत्सर्जन अगर ऊपर से नीचे की ओर बहाव है, तो वापसी नीचे से ऊपर की ओर यात्रा है, आत्मा की अपने स्रोत, अपने घर यानी एक की ओर वापसी।
ये वापसी कैसे होती है?
ये एक अंदरूनी सफर है। इसमें आत्मा को भौतिक दुनिया और इंद्रियों के आकर्षण से ऊपर उठना होता है, फिर बुद्धि के स्तर से गुजरना होता है, और अंततः एक के साथ फिर से एकाकार हो जाना होता है। इस परम मिलन की अवस्था को प्लोटिनस हेनोसिस कहते हैं, यानी पूर्ण एकता, जहां सारा भेद मिट जाता है।
इस पूरे मॉडल में फिर बुराई और मैटर की जगह कहाँ है? क्या प्लोटिनस पदार्थ को बुरा मानते थे?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्लोटिनस के लिए बुराई कोई अलग से मौजूद शक्ति नहीं है, जैसे कोई शैतान हो। बुराई बस अच्छाई, एकता और रूप का अभाव है, उसकी कमी है, प्राइवेशन।
जैसे अंधेरा, जो रोशनी का न होना है।
बिल्कुल सही उपमा है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, वो बस रोशनी की गैर मौजूदगी है। वैसे ही बुराई है। अब पदार्थ की बात करें, चूंकि पदार्थ एक से सबसे ज्यादा दूर है, उसमें एकता और रूप की सबसे ज्यादा कमी है, इसलिए वो बुराई और क्रूरता का आधार बन जाता है, उनका प्रिंसिपल बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पदार्थ अपने आप में दुष्ट या बुरा नहीं है, बस वो दिव्यता से सबसे ज्यादा वंचित है।
ये तो बुराई को समझने का एक बहुत ही मतलब सुलझा हुआ नजरिया लगता है। इसने जरूर बाद के विचारकों को बहुत प्रभावित किया होगा।
ओह, बहुत ज्यादा। प्लोटिनस का ये जो पूरा तत्वमीमांसा है ना, ये मेटाफिजिक्स, इसने पश्चिमी विचार पर शायद सबसे गहरा और स्थायी असर डाला है। उन्होंने प्लेटो के दो अलग अलग जगतों को उत्सर्जन के सिद्धांत से बड़ी खूबी से जोड़ दिया। अरस्तु का जो अचल चालक था, अनमूव्ड मूवर, उसकी तुलना में प्लोटिनस का एक और भी ज्यादा परम और सरल है।
कैसे?
तो अरस्तु का अचल चालक सोचता है खुद के बारे में, लेकिन प्लोटिनस का एक सोचने की क्रिया से भी परे है। सोचने का काम दूसरे स्तर यानी बुद्धि, नोस, का है। और प्लेटो की तुलना में प्लोटिनस ने सीधे रहस्यमय अनुभव पर, उस हेनोसिस पर, कहीं ज्यादा जोर दिया।
तो ये विचार फैले कैसे? प्लोटिनस की विरासत क्या रही? किन लोगों पर असर हुआ?
उनके तुरंत बाद तो उनके शिष्यों ने ही काम आगे बढ़ाया, खासकर पोरफिरी, फिर याम्ब्लिचस, प्रोक्लिस। इन नियोप्लेटोनिस्टों ने उनके विचारों को और व्यवस्थित किया, फैलाया।
नियोप्लेटोनिज्म रोमन साम्राज्य के आखिरी दौर का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक स्कूल बन गया था।
और दर्शन के दायरे से बाहर क्या धर्मों पर भी असर पड़ा?
हाँ, और ये असर तो कमाल का रहा है। आप ईसाई धर्मशास्त्र को देखिए, सेंट ऑगस्टीन, जो पश्चिमी ईसाई विचारकों में शायद सबसे बड़े नाम है, वो खुद लिखते हैं कि कैसे प्लेटोवादियों की किताबें पढ़कर उनका जीवन बदल गया।
अच्छा, ऑगस्टीन पर भी?
जी हाँ।
प्लोटिनस के विचारों ने ही उन्हें ईश्वर को अभौतिक, इमटीरियल, समझने में मदद की, और बुराई को अच्छाई के अभाव के रूप में देखने का नजरिया दिया। ये विचार ईसाई धर्म की मुख्य बौद्धिक धारा में हमेशा के लिए शामिल हो गए। फिर स्यूडो डायोनिशियस हैं, जिनका पूर्वी रूढ़िवादी परंपरा पर गहरा असर है, वो भी प्लोटिनस से बहुत प्रभावित थे।
और इस्लाम और यहूदी धर्म में?
बिल्कुल। इस्लामी दर्शन में भी अलकिंदी, अलफराबी और खासकर एविसिना, इब्न सिना जैसे महान दार्शनिकों के तत्व मीमांसा पर प्लोटिनस का गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि ये दिलचस्प है कि उनके विचार अक्सर अरबी अनुवादों में गलती से अरस्तु के नाम से पहुंचा दिए गए थे, थियोलॉजी ऑफ एरिस्टोटल नाम की किताब के जरिए, जो असल में प्लोटिनस के विचारों पर आधारित थी।
अरे
हाँ, और यहूदी विचार में भी मैमोनाइड्स और बाद में कबाली रहस्यवादियों ने उनके एक, उत्सर्जन, आत्मा की वापसी जैसे विषयों से काफी प्रेरणा ली।
और फिर पुनर्जागरण में?
वहां तो जैसे प्लोटिनस का पुनर्जन्म हुआ, जब 15वीं सदी में फ्लोरेंस में मार्सिलियो फिसिनो ने एनियड्स का लैटिन में अनुवाद किया, तो यूरोप के बौद्धिक जगत में जैसे एक तूफान आ गया। इसने पुनर्जागरण की कला, साहित्य और दर्शन को गहराई से सींचा।
क्या आज की दुनिया में, जहां विज्ञान और तकनीक इतनी हावी हैं, प्लोटिनस के ये विचार क्या ये अब भी मायने रखते हैं?
ये सवाल बहुत मौजू है और मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल रखते हैं। देखिए, चेतना की प्रकृति क्या है, मन और माध्यम का रिश्ता क्या है, आध्यात्मिकता का असली मतलब क्या है, इन सवालों पर आज भी जो बहसें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं प्लोटाइनस के विचारों की गूंज सुनाई देती है।
कैसे?
उनकी जो अंदरूनी यात्रा की बात है, उस परम स्रोत से जुड़ने की खोज, वो आज भी बहुत से लोगों को आकर्षित करती है, खासकर उन्हें जो शायद संगठित धर्मों के ढांचे से बाहर जाकर आध्यात्मिकता को समझना और अनुभव करना चाहते हैं। यहां तक कि हेगल जैसे आधुनिक जर्मन आदर्शवादी दार्शनिकों ने भी चेतना और आत्मज्ञान पर प्लोटाइनस के काम से प्रेरणा ली।
प्लोटाइनस के कुछ कथन हैं जो उनके दर्शन की आत्मा को जैसे पकड़ लेते हैं। एक मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है, अपने भीतर लौटें और देखें, और यदि आप अभी तक खुद को सुंदर नहीं पाते हैं तो वैसा ही करें जैसा एक मूर्ति का निर्माता करता है जिससे सुंदर बनाया जाना है। वह यहाँ काटता है, वहाँ चिकना करता है, इस रेखा को हल्का बनाता है, दूसरी को और शुद्ध, जब तक कि उसके काम पर एक प्यारा चेहरा न उगाए। तो तुम भी वैसा ही करो।
वाह, ये एनियड्स के पहले भाग I.6 सौंदर्य पर नाम के निबंध से है, और इसमें उनका पूरा नैतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम कह सकते हैं छिपा हुआ है। आत्म सुधार, आत्मपूर्णता एक कला की तरह है। आपको अपनी कमियों को, अपनी फालतू चीजों को तराशना है, हटाना है, ताकि आपकी आत्मा की जो असली सहज दिव्य सुंदरता है वो प्रकट हो सके।
और ये भी शायद उसी निबंध से है, आंख ने सूर्य को तब तक नहीं देखा जब तक कि वो पहले सूर्य जैसी न हो गई हो, और आत्मा कभी भी प्रथम सौंदर्य का दर्शन नहीं कर सकती जब तक कि वो स्वयं सुंदर न हो।
हाँ, ये रूपक तो कमाल का है। ये उनके ज्ञान मीमांसा, मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और उनके रहस्यवाद का सार है। समान ही समान को जान सकता है, लाइक नोज लाइक। अगर आपको परम सौंदर्य यानी दिव्यता को जानना है, उसका अनुभव करना है, तो आपको पहले अपनी आत्मा को सुंदर दिव्य बनाना होगा, उसके जैसा बनना होगा। जानना सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि वैसा हो जाना है।
और इस बनने की प्रक्रिया, ये यात्रा कैसी है?
वो कहते हैं, क्योंकि यह पैरों की यात्रा नहीं है, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और इसके बजाय एक और दृष्टि का आवाहन करना होगा जो तुम्हारे भीतर जागृत होनी है। एक दृष्टि जो सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं।
बिल्कुल साफ है ना?
हाँ, ये कोई बाहरी दुनिया का सफर नहीं है कि कहीं चलकर जाना है, ये तो अंदरूनी दुनिया का सफर है। इंद्रियों से, बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर अपने अंदर की उस गहरी दृष्टि को, उस अंतर्ज्ञान को जगाना है। वो कहते हैं कि ये दृष्टि हम सबके अंदर है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते।
और इस यात्रा का शिखर,
उसका वर्णन वो करते हैं इस मशहूर वाक्यांश से, अकेले का अकेले की ओर उड़ान। ये उस परम रहस्यमय अनुभव की बात है जहां अकेली आत्मा सारे बंधनों, सारे द्वेतों से मुक्त होकर उस अकेले परम एक में विलीन हो जाती है।
और वहां पहुंचने का तरीका,
संक्षेप में कहें तो सब कुछ काट दो, यानी हर तरह के बाहरी और मानसिक लगाव, हर तरह की जटिलता, हर तरह की पहचान को हटाते जाना है, ताकि आप उस परम सरल शुद्ध सार तक पहुंच सकें।
इतने ऊंचे और गहरे विचार, लेकिन क्या सभी ने इन्हें ऐसे ही स्वीकार कर लिया? क्या प्लोटाइनस की आलोचना भी हुई या कोई विवाद?
हाँ, आलोचना तो हुई है और होती रही है। कुछ आलोचकों ने, खासकर बाद के दौर में, उन्हें दुनिया नकारने वाला, वर्ल्ड डिनाइंग या पलायनवादी कहा। उनका तर्क था कि प्लोटाइनस शरीर और भौतिक दुनिया से ध्यान हटाने पर इतना जोर देते हैं कि वो जीवन से भागने जैसा लगता है।
लेकिन उनके समर्थक क्या कहते हैं?
उनके समर्थक या व्याख्याकार कहते हैं कि ये पूरी बात नहीं है। प्लोटाइनस ने ब्रह्मांड को एक की एक सुंदर दिव्य छवि माना। हाँ, वो भौतिक दुनिया को अंतिम सत्य नहीं मानते थे, लेकिन उसे चिंतन के योग्य और सुंदर जरूर मानते थे, क्योंकि वो अपने स्रोत की ओर इशारा करती है।
और उनका ज्ञानवादियों से भी कुछ टकराव था?
वो तो बड़ा टकराव था। ज्ञानवादी मानते थे कि ये दुनिया, ये भौतिक ब्रह्मांड किसी बुरी कमतर शक्ति, जिसे वो डेमियर कहते थे, ने बनाया है, और ये एक तरह की जेल है जिससे आत्मा को छुटकारा पाना है। प्लोटाइनस ने इसका जोरदार खंडन किया।
उन्होंने इस पर लिखा भी है।
हाँ, उन्होंने ज्ञानवादियों के विरुद्ध, अगेंस्ट द ग्नोस्टिक्स नाम से एक पूरा निबंध लिखा जो एनियड्स में शामिल है। उसमें उन्होंने तर्क दिया कि ये नजरिया ब्रह्मांड की जो अंदरूनी अच्छाई और सुंदरता है, जो दिव्यता से आती है, उसका अपमान करता है।
और ईसाई धर्म के साथ भी कुछ मतभेद रहे होंगे?
हाँ, बुनियादी मतभेद थे। जैसा हमने कहा, ईसाई धर्म में एक व्यक्तिगत दुनिया बनाने वाले ईश्वर की अवधारणा है। प्लोटिनस का एक अव्यक्तिक है। फिर ईसाई धर्म में ईश्वर की कृपा ग्रेस पर बहुत जोर है और ईसा मसीह के अवतार इनकार्नेशन पर। प्लोटिनस का मार्ग ज्यादातर दार्शनिक अनुशासन और आत्मप्रयास से एक तक पहुंचने का है, जिसमें कृपा या अवतार की वैसी भूमिका नहीं है। ये कुछ मुख्य अंतर थे। आज भी कुछ पैसे चलती रहती हैं, जैसे क्या प्लोटिनस को मुख्य रूप से एक दार्शनिक माना जाए या एक रहस्यवादी। क्या उनका उत्सर्जन का सिद्धांत वाकई एक की परम एकता को बनाए रखते हुए दुनिया की बहुरता को ठीक से समझा पाता है?
कुछ आधुनिक नारीवादी आलोचक उनके दर्शन में जो पुरुष केंद्रित भाषा और कल्पना है उस पर भी सवाल उठाते हैं।
प्लोटिनस के जीवन से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें भी है ना, जैसे ये कि उन्होंने कभी अपना चित्र या मूर्ति बनवाने से इनकार कर दिया था। हाँ, ये पोर्फिरी ने लिखा है। प्लोटिनस कहते थे, क्या ये कम है कि हमें इस शरीर रूपी छवि को ढोना पड़ रहा है जिसमें प्रकृति ने हमें कैद कर दिया है, और तुम चाहते हो कि मैं इसकी एक और ज्यादा स्थायी छवि बनवाऊं, जैसे कि ये कोई बहुत देखने लायक चीज हो। उनके लिए शरीर आत्मा की असली हस्ती की बस एक धुंधली परछाई थी।
ये उनके दर्शन से बिल्कुल मेल खाता है। और उनके अपने रहस्यमय अनुभवों के बारे में पोर्फिरी ने क्या लिखा है? क्या उन्हें खुद हेनोसिस का अनुभव हुआ था?
पोर्फिरी बताते हैं कि जब वो कई सालों तक प्लोटिनस के साथ थे, उस दौरान प्लोटिनस ने कम से कम 4 बार हेनोसिस यानी एक के साथ उस परम मिलन का अनुभव किया था। ये बात रेखांकित करती है कि उनका दर्शन सिर्फ किताबी बातें या कोरा सिद्धांत नहीं था, बल्कि उनकी जी हुई अनुभव की हुई सच्चाई थी।
उनके अंतिम शब्द भी बहुत मार्मिक और उनके पूरे दर्शन का सार लगते हैं।
बिल्कुल, कहते हैं कि जब वो मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने अपने पास मौजूद दोस्त और डॉक्टर यूस्टोशियस से कहा, कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य है उसे ब्रह्मांड की समग्र दिव्यता में वापस ले जाओ। मतलब वही आत्मा की अपने मूल स्रोत की ओर वापसी की अंतिम पुकार।
ये भी पढ़ना दिलचस्प था कि वो इतने आत्मलीन और दार्शनिक होने के बावजूद दुनियादारी से या व्यवहारिक जिम्मेदारियों से भागते नहीं थे। ऐसा जिक्र है कि कई अमीर रोमनों ने मरते वक्त प्लोटिनस को अपने अनाथ बच्चों का संरक्षक बनाया था।
हाँ, ये उनकी व्यवहारिक समझ और लोगों के उन पर भरोसे को दिखाता है। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, सम्राट गैलिनस और महारानी सलोनिना तक उनके छात्र और प्रशंसक थे। उनकी पढ़ाने की शैली भी बड़ी अनौपचारिक और संवादात्मक थी। ऐसा नहीं कि बस लेक्चर दे रहे हैं, वो छात्रों को बीच में टोक कर सवाल पूछने के लिए उकसाते थे। पोर्फिरी लिखते हैं कि जब वो बोलते थे, खासकर किसी गहरी बात पर, तो उनके चेहरे पर एक खास चमक आ जाती थी, जिसे अंदर से कोई रोशनी फूट रही हो।
तो प्लोटिनस की इस पूरी गहरी और दिलचस्प चर्चा के बाद अगर हमें कोई एक मुख्य सीख या संदेश लेना हो तो वो क्या होगा?
मेरे ख्याल से प्लोटिनस हमें एक बहुत जरूरी और शायद आज और भी ज्यादा जरूरी बात याद दिलाते हैं। वो ये कि जीवन की जो गहरी समझ है, जो असली शांति और खुशी है, वो बाहरी चीजों में, दुनिया की भाग दौड़ में नहीं, बल्कि अपने अंदर मुड़ने में है, भीतर देखने में है। उन्होंने दिखाया कि कैसे कठोर अनुशासित तर्क और गहरा व्यक्तिगत रहस्यमय अनुभव एक साथ चल सकते हैं, बल्कि एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। उनका पूरा दर्शन हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने और उस परम एकता को खोजने का अनुभव करने का न्योता देता है, जिससे हम सब निकले हैं और जहां अंततः हमें लौटना है।
और शायद आज की इस भागदौड़ भरी, अक्सर बिखरी हुई और बाहरी चीजों पर टिकी दुनिया में प्लोटिनस की ये अंदर की ओर यात्रा और एक के साथ जुड़ने की तलाश, ये शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है।
ये हमें एक ठहराव, एक दिशा दे सकती है।
यकीनन, ये सवाल कि चेतना क्या है, ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, क्या कोई परम यथार्थ है जिससे हम जुड़ सकते हैं, ये सवाल आज भी उतने ही ताजा और महत्वपूर्ण हैं जितने प्लोटिनस के समय में थे। उनका दर्शन, उनकी यात्रा हमें इन सवालों पर नए सिरे से सोचने और शायद अपनी जिंदगी को एक ज्यादा गहरे अर्थ से भरने की प्रेरणा दे सकती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।